हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 3-4 दिन बाद रवि को आदित्य के बारे में पता चल गया, लेकिन उसने ये बात पूरी तरह गुप्त रखी। उसने नैना और बाकी सबको ये बताया कि आदित्य फिलहाल उपलब्ध नहीं है और जहाँ भी है अभी सामने नहीं आ सकता। मीडिया में सबको यही बताना है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है और वो अस्पताल में कोमा में है। अनय के घर पर मनस्वी को जब न्यूज चैनल से ये बात पता चली तो उसे बहुत अफसोस हुआ। उसे लगा कि शायद सच में ऐसा ही है और आदित्य को एक्सीडेंट की वजह से बहुत चोट आई है, इस वजह से वो बुरा महसूस करने लगी। उसे लगा कि वो शायद विराज को समय पर रोक सकती थी या फिर आदित्य को पहले ही चेता सकती थी, लेकिन सब कुछ पता होने के बाद भी उसने कुछ नहीं किया। इस बारे में सोचते हुए वो काफी मायूस होकर टीवी देख रही थी, लेकिन टीवी से ज्यादा ध्यान अब इन सब बातों में था। सोचते सोचते उसे बहुत गिल्ट हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी अनय वहां आया और मनस्वी को दोनों हाथ चेहरे पर रखकर रोते हुए देख लिया। अनय ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, क्या हुआ तुम्हें अब ऐसे अचानक से? मम्मी की याद आ रही है क्या? क्योंकि उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो किसी गंभीर बात को लेकर इतनी भावुक हुई है या फिर सच में किसी को याद करके। अपने आंसू पोंछते हुए मनस्वी ने एकदम गंभीर स्वर में पूछा, तुम्हें सच में लगता है मैं किसी को याद करके रोने वाली लड़की हूँ? इतने समय में इतना भी नहीं जानते हो क्या तुम मुझे? इस बार अनय ने भी उसी तरह गंभीर होकर कहा, तुमने कभी खुद को जानने का मौका ही कहाँ दिया? उसकी ये बात सुनकर मनस्वी एकटक उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन वो फिलहाल इस पर कुछ नहीं बोल पाई। बात को नज़रअंदाज करते हुए टॉपिक बदलते हुए बोली, नहीं मैं रो नहीं रही थी, मुझे बस बुरा लग रहा था। अभी मैंने न्यूज़ देखी, तुम्हारा दोस्त आदित्य कोमा में है शायद एक्सीडेंट के बाद से, और मुझे इस बात पर पछतावा हो रहा है। मैं शायद ये एक्सीडेंट रोक सकती थी और विराज को भी। मनस्वी की बात सुनकर भी अनय ने उसे सच नहीं बताया, जबकि उसे पता था कि आदित्य बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस बारे में वो मनस्वी को नहीं बता सकता क्योंकि आदित्य ने मना किया था। अनय को अब तक मनस्वी पर पूरा विश्वास हो गया था, लेकिन आदित्य के मामले में वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने कहा, तुम अभी भी रोक सकती हो और आदित्य भले ही कोमा में है लेकिन वो ठीक हो जाएगा। जो हो गया तुम उसके बारे में मत सोचो और जो हो सकता है उसके बारे में सोचो, शायद जो होने वाला है तुम उसे रोक सकती हो। मनस्वी ने कन्फ्यूजन से पूछा, ऐसा क्या होने वाला है? अनय ने थोड़ा सोचते हुए कहा, पता नहीं, लेकिन विराज, तुमने अभी उसके बारे में बात की ना, वो कुछ तो प्लान कर रहा होगा ना, और वैसे भी तुमने उसे रोकने की कोशिश की तो वो अब तुम्हें किसी भी चीज में शामिल नहीं करेगा। मनस्वी ने सफाई देते हुए कहा, क्या मतलब है कि वो शामिल नहीं करेगा? मैं खुद भी ये सब कुछ करना नहीं चाहती, पहले भी मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी, लेकिन उस विराज ने मुझे यूज किया अपने फायदे के लिए। अनय ने उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब देखो, तुम्हें बेवकूफ बनाना आसान तो है नहीं, लेकिन अगर उसने ऐसा किया है तो सोचो वो कितना खतरनाक होगा। उसका दिमाग शायद अलग तरह से चलता है या फिर वो कुछ तो सोच रहा होगा, प्लान कर रहा होगा, तुम्हें फिलहाल वो पता करना है। मनस्वी ने परेशान होते हुए पूछा, अरे लेकिन कैसे? वो अब मुझ पर विश्वास नहीं करता है और मुझे कुछ भी नहीं बताने वाला। तो फिर? अनय ने जवाब दिया, इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। मनस्वी ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है बताओ। इसके बाद अनय पूरा प्लान मनस्वी को ठीक तरह से बताने और समझाने लगा और वो भी उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। सुनैना और आदित्य एक गुप्त जगह पर थे। नदीम और अरविंद के अलावा किसी को भी उस जगह के बारे में पता नहीं था। भवानी काका सिर्फ उस कमरे के बारे में जानते थे जहाँ सुनैना आई थी। उस कमरे के अंदर बनी गुप्त जगह के बारे में भवानी काका या घर में काम करने वाली किसी नौकर को नहीं पता था। उन्होंने नौकरों को भी उस कमरे में जाने से मना किया था, लेकिन उन दोनों का खाना उस कमरे में आ गया था। वो दोनों काफी आराम से उस जगह पर थे, लेकिन सुनैना को बाकी सबकी टेंशन हो रही थी। खाना खाते वक्त उसे नैना के बारे में याद आया तो उसने आदित्य से कहा, ओ शिट आदि। आदित्य ने पूछा, क्या हुआ अब? सुनैना ने जवाब दिया, अरे वो दी, तुम्हें पता है उनके और अक्षत सर के बीच कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, जिसकी वजह से नैना दी बहुत डिस्टर्ब थी। आई थिंक मुझे उनके पास जाना चाहिए। आदित्य ने कहा, अरे तो क्या खाना छोड़कर जाओगी? खाना तो खत्म कर लो, उसके बाद चली जाना, बट अभी तो काफी समय है, काम करो तुम, कल चली जाना। सुनैना थोड़े चिंता के साथ बोली, ऑलरेडी 4 दिन हो गए हैं मुझे यहाँ पर, और वो लोग भी तो मुझे ढूंढ रहे होंगे ना। आदित्य ने उसे बताया, नहीं, उन लोगों को सब कुछ पता है। जो भी हम लोगों ने बताया है वो नैना तक बात पहुँच गई होगी, और मुझे पता चला है फिलहाल नैना अक्षत के घर में उसके साथ ही है, और स्वीटी भी वहाँ पर है। सुनैना ने हैरानी से पूछा, अरे ये कब हुआ? इसका मतलब उनके बीच में गलतफहमी खत्म हो गई क्या? आदित्य को इस बारे में पूरी बात तो नहीं पता थी, लेकिन फिर भी उसे पता था कि अक्षत और नैना एक साथ अक्षत के घर में ही है। इसलिए उसने बहुत ही आराम से कहा, हाँ, जब गलतफहमी थी तो उसे तो खत्म होना ही था। गलतफहमी आखिर कब तक रहेगी? और तुम इतना मत सोचो, वैसे कल भी बन जाना तुम। मैं यहाँ पर अकेला बोर हो जाऊँगा, तुम मेरे साथ ही रहना, और नैना के बारे में मैं पता करवा लूँगा। पूरी बात सुनने के बाद भी पता नहीं क्यों सुनैना को तसल्ली नहीं हुई, इसलिए उसने मुँह बनाकर कहा, ठीक है, बट एक बार मुझे सबसे मिलना था, तो क्या मैं सिर्फ कुछ देर के लिए बाहर जा सकती हूँ? सुनैना के पूछने पर आदित्य भी उसे मना नहीं कर पाया, और उसने भी राजी होते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं अरेंजमेंट करवा दूंगा, लेकिन आज नहीं कल। सुनैना मुस्कुराकर बोली, ओके। इसके बाद वो दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगे, और उन्होंने काफी सारी चीजों के बारे में चर्चा की। उसी दिन शाम को नैना के साथ बनाए गए अपने प्लान के हिसाब से अक्षत अपनी शूटिंग से सीधा वापस अपने घर नहीं आया, बल्कि वो रागिनी के घर पर गया। रागिनी को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, इसलिए जैसे ही उसके फ्लैट की डोर बेल बजाई, उसने कुछ देर बाद अपने फ्लैट का दरवाजा खोला, लेकिन सामने अक्षत को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, और उसने तुरंत ही दरवाजा वापस बंद कर दिया। उसके इस तरह दरवाजा बंद करते ही अक्षत ने कहा, व्हाट द हेल, पागल है क्या ये लड़की? सुपरस्टार अक्षत कपूर के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया इसने? उस दिन तो पार्टी में खुद ही मेरे पीछे आई थी, तो फिर आज क्या हुआ? रहने देता हूँ, भाड़ में जाइए। इतना बोलकर अक्षत वहाँ से वापस मुड़ा, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया कि ये सब कुछ उसका प्लान है, और वो इसलिए यहाँ आया है कि वो रागिनी से सच बुलवा पाए। तो फिर ये सोचकर उसने कसकर अपनी मुठ्ठियाँ बांध ली, और दांतों पर दांत रखते हुए उसने वापस दरवाजे की तरफ देखा, और कुछ सोचते हुए फिर से डोरबेल बजाई। डोरबेल लगातार बजने के बाद भी जब अंदर से दरवाजा नहीं खुला, तो फिर अक्षत ने दरवाजा हाथ से खटखटाते हुए आवाज लगाकर कहा, रागिनी क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो, मुझे बात करनी है तुमसे। अक्षत के इतना बोलने के कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। अक्षत ने नोटिस किया कि रागिनी जैसी अभी कुछ देर पहले लग रही थी, अब वैसे नहीं लग रही थी। उसने शायद कपड़े, हेयर या मेकअप कुछ तो बदला था, लेकिन क्या ये अक्षत ठीक से नोटिस नहीं कर पाया था पहले? अक्षत ने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अभी भी वो कुछ खास नहीं लग रही थी। अक्षत ने एक्टिंग करते हुए कहा, रागिनी, मुझे तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। क्या अब तुम भी इस तरह से मेरे मुंह पर दरवाजा बंद करोगी? उस दिन के बाद मैंने बहुत सोचा हमारे बारे में, और मुझे लगा कि तुम्हें और हमारे होने वाले बच्चे को मेरी जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ पर आया। लेकिन तुम? रागिनी बहुत ही अजीब ढंग से मुस्कुराकर खुश होते हुए बोली, अच्छा, तो तुम्हें अपनी गलती रियलाइज हो गई है क्या, और तुम मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आए हो? तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है अक्षत, सच में? अक्षत ने एकदम गंभीर होकर कहा, सबसे पहली बार हमारी होने वाले बच्चे प्यार की निशानी, इसे एक गलती तो मत कहो। और रही बात साथ ले जाने वाली, तो वो तो मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, लेकिन हाँ, हम दोनों साथ में यहाँ तुम्हारे घर में रह सकते हैं। उसकी बातें सुनकर रागिनी को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने कंफ्यूज होते हुए पूछा, क्या मतलब है इस बात का? तुमने मुझे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया है, और तुम हमारे रिश्ते को छुपाकर रखना चाहते हो क्या? लेकिन अक्षत, ये ज्यादा दिन तक तो छुप नहीं पाएगा ना? अक्षत ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसे छुपाकर क्यों रखना चाहूँगा? आखिर हम दोनों तो बहुत जल्द ही शादी भी कर लेंगे ना, वो भी हमारा बेबी होने से पहले। बट एक प्रॉब्लम है, रागिनी ने थोड़ा घबराते हुए पूछा, क्या प्रॉब्लम है अक्षत, बताओ, शेयर विद मी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक गहरी सांस लेते हुए अक्षत ने बोलना शुरू किया, यही कि मेरा बंगला, मेरी प्रॉपर्टी और जितने भी शेयर और पैसे थे, वो सब कुछ अभी फ़िलहाल मेरा नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड नैना के नाम कर दिया था, और उसे जब हम दोनों के बारे में पता चला है, तो उसने लीगली सब कुछ सिर्फ अपने नाम करवा लिया, तो अब मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं बचा है, और इसलिए मैं तुम्हें ले भी नहीं जा सकता, क्योंकि अब तो मेरा अपना कोई घर भी नहीं है, और पेरेंट्स वो भी इस बात के लिए राजी नहीं होंगे हमारे रिश्ते के लिए। अक्षत की ये बातें सुनकर रागिनी को जैसे बहुत तेज झटका लगा। व्हाट व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट अक्षत, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें समझ भी आ रहा है? और ऐसे कैसे वो तुम्हारा सब कुछ ले सकती है? तुम्हारी मेहनत की कमाई थी वो सब, और तुमने उसका नाम क्यों डलवाया अपनी प्रॉपर्टी में? क्या सच में तुम उस पर इतना भरोसा करते थे? अक्षत ने मायूस होने की एक्टिंग करते हुए कहा, हम दोनों करते थे और मुझे लगता था वो मुझसे सच्चा प्यार करती है, लेकिन वो तो बस जैसे मौका ढूंढ रही थी। और जैसे ही उसे हमारे बारे में पता चला, उसने मुझे बहुत कुछ सुनाया और फिर सब कुछ इस शर्त पर अपने नाम करवा लिया कि वो न्यूज़ और मीडिया में मेरे इस धोखे के बारे में नहीं बताएगी। रागिनी ने अपनी इम्पोर्टेंस बनाने की कोशिश करते हुए कहा, अरे लेकिन कौन सा धोखा, तुम तो पहले से ही मुझसे प्यार करते थे ना? अक्षत उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, करता था नहीं, अभी भी करता हूँ बेबी, बट शायद मुझे थोड़ा लेट रियलाइज हुआ, और इसके लिए तो तुम मुझे माफ कर ही दोगे, है ना रागिनी? रागिनी ने जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ माफ कर दूंगी मैं तुम्हें, माफ, लेकिन तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी और सारी चीजों के लिए कुछ तो करना चाहिए? अक्षत सारी उम्मीदें छोड़ता हुआ वहाँ बैठकर बोला, क्या कर सकता हूँ मैं इसमें, और वैसे भी तुम्हें मेरा साथ चाहिए या फिर मेरी प्रॉपर्टी और पैसे? रागिनी ने भी उसका हाथ पकड़कर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हो अक्षत, पैसे तो मेरे पास भी हैं, आई जस्ट वॉन्ट यू एंड माई हैप्पी फैमिली विद यू। रागिनी की ऐसी बातें सुनकर और उसका हाथ पकड़कर अक्षत को बहुत ही घृणित डिस्गस्टिंग महसूस हो रहा था, क्योंकि उसे साफ समझ आ रहे थे रागिनी के इरादे, लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकता और उसे अपने प्लान के अनुसार ही चलना पड़ेगा। क्रमशः